पिछले दो तीन दिनों में हमने भक्तिर साम्र सिंधु के आमुख में किस प्रकार संक्षिप्त रूप में लेखक का इतिहास, किस तरह से उनको स्फूर्ति मिली, ये बात चर्चा किया। और भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ का शीर्षक किस तरह से योग्य है इस ग्रंथ के लिए, ये चर्चा किया। और फिर भूमिका में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना नहीं होता है भूमिका में, भूमिका एक्चुअली हिंदी में देखा मैं कल मैं प्रस्तावना बोल रहा था, बट एक्चुअली इंट्रोडक्शन इज भूमिका। तो भूमिका में तीन चीजों का वर्णन है। मुख्य रूप से ये जो भूमिका है प्रभुपाद जी का, भक्तिर साम्र सिंधु का, नेक्टर ऑफ डिवोशन का, ये पहले जो 16 श्लोक हैं भक्तिर साम्र सिंधु ग्रंथ के, मूल ग्रंथ के, उनका थोड़ा विस्तृत रूप से वर्णन है। तो उसमें तीन चीज बताए हैं रूप गोस्वामी ने। पहले 6 श्लोकों में मंगलाचरण, फिर 2 श्लोकों में ग्रंथ का जो कंटेंट्स, क्या मैं बता रहा हूं इस ग्रंथ में किस तरह से विभागों में बांटा गया है उसका वर्णन है, और तत्पश्चात बाकी जो 7 श्लोक है उसमें शुद्ध भक्ति का अधिकृत डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, वो उसका वर्णन है। परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। तो मंगलाचरण, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, मंगलाचरण होए त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो कोई भी ग्रंथ के शुरुआत में जो मंगलाचरण होता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि इसमें तीन चीजों का वर्णन होता है मंगलाचरण में। सबसे पहले नमस्कार, हम जिसे स्फूर्ति मिली है, जिसकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, उनको नमस्कार करते हैं ताकि मंगल हो इस ग्रंथ में, कोई बाधा ना आए इस तरह से। तो उनकी कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण में सबसे पहले नमस्कार करते हैं ग्रंथ में। फिर वस्तु निर्देश, मंगलाचरण में यह भी सूचित करते हैं कि इस ग्रंथ में का विषय क्या है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, वस्तु निर्देश। और आशीर्वाद के जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको क्या, उसे क्या उपलब्ध होगी, क्या आशीर्वाद मिले। और प्रार्थना करते हैं कि उनको ग्रंथ का जो उद्देश्य है उनको प्राप्त हो आशीर्वाद। जिस उद्देश्य से मैं ग्रंथ लिख रहा हूं वो उन्हें प्राप्त हो, पूर्ण रूप से उसका वो फायदा उठा पाए। तो ये मंगलाचरण होता है। तो पहला 6 श्लोक जो है भक्तिर साम्र सिंधु का वो मंगलाचरण है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में 14 श्लोकों में मंगलाचरण लिखते हैं और उसमें पूरा वर्णन करते हैं, मैं क्या वर्णन करने वाला हूं, और प्रणाम करते हैं, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतार का, और अंत में आशीर्वाद देते हैं, अनर्पित चरिंचिराद करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम नतो जलसाम सुभक्तिश्यम हरि ही पुरट सुंदर द्विति कदंब संदीपित सदा हृदय कंधरी स्फुरतु वा शशिनंदन। आपके हृदय कमल में हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन प्रकट हो, उनकी कृपा बनी रहे, इस तरह से। तो तीन चीज, और फिर भगवान के बहिरंग कारण अंतरंग कारण इत्यादि का वर्णन। तो मंगलाचरण होए त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो पहला श्लोक में, पहला श्लोक की वर्णन इस प्रकार है। रूप गोस्वामी कहते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रश्रमर रुचिरुद्ध तारका पाली ही कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। तो विधुर जयति, विधु का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है विधु। और विधु का यह भी अर्थ है कि वो सारे जो क्लेश हैं हमारे जीवन में उसको वो नष्ट करने वाले हैं। विधु का दूसरा अर्थ है कि सबसे परे हैं हम, जैसे भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, सरपैसिंग ऑल अदर्स, उनकी तुलना में असमऊर्ध्व, उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊर्ध्व या उनसे बढ़कर कोई नहीं है, इसका मतलब भी विधु। और दूसरा अर्थ है बेस्टोइंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, सबसे श्रेष्ठ आनंद देने वाले, प्रदान करने वाले, वो विधु। और तीसरा एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ ऑल अदर्स, जो सब चीजों के कारणों के कारण है, वो भी विधु। देखिए एक शब्द में कितने चीजें सूचित किए हैं श्री रूप गोस्वामी दिव्य आनंद में। जैसा मैंने कहा कल, दिव्य और तीव्र आनंद के साथ, तीव्र करुणा के साथ सबको फायदा देने के हेतु बड़े उत्साह के साथ इसकी रचना की है और आशीर्वाद दे रहे, विधुर जयति कृष्ण, ऐसे कृष्ण की जय जयकार हो। और एग्जिस्टिंग इटर्नली विथ ऑल एक्सेलेंसेस, सारे ऐश्वर्यों के साथ हमेशा हमेशा के लिए निवास करने वाले, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो इस तरह से ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, विधुर जयति, उनकी जय जयकार हो, जो अखिल रसामृत मूर्ति, अमृत मूर्ति, उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है अमृत मूर्ति। पर न केवल ये अमृत मूर्ति सच्चिदानंद विग्रह है, पर अखिल रस, जैसे कल हमने चर्चा किया, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ, अपने अग्रज के साथ मथुरा के इस अखाड़े में प्रवेश किए, बहुत सुंदर मंच बनाया गया था वहां प्रवेश किए, तो किस प्रकार उन्होंने पांच मुख्य रस, सात गौण रस, सब रसों का आस्वादन कराया अलग अलग प्रकार के लोगों को, अपने अपने चेतना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके आदान प्रदान करने की इच्छा के अनुसार भगवान ने ये बारहों रस, जो संपूर्ण रस है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, पूरा आस्वादन कराया। सो अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रश्रमर रुचिरुद्ध तारका पाली ही। बहुत सारी गोपियां हैं प्रमुख उसमें, अलग अलग ब्रह्मा पुराणों में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो अपनी अखिल रसामृत मूर्ति होने के कारण और ये सारे इनके अंदर गुण होने के कारण उन गुणों के द्वारा तारका और पालिका इत्यादि गोपियों को उन्होंने पूर्ण रूप से मोहित कर लिया है. ही सब्जुगेटेड. कलित श्यामा श्यामला एंड ललित. कलित श्यामा ललित. श्यामा और ललिता देवी इनको पूर्ण रूप से उनको भी मोहित कर दिया है. मग्न मतलब एब्सॉर्ब्ड. और राधा प्रियां और श्रीमती राधा रानी को आनंद देने वाले उनको प्रसन्न कर रहे हैं. इस तरह से ऐसे व्यक्ति को विधुर जयती प्रणाम कर रहे हैं. तत्पश्चात दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे चैतन्य देवस्य. दूसरा श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं. हृदयस्य प्रेरितया प्रेरणया, जिनके प्रेरणा से, जो मेरे हृदय में प्रेरणा मिल रही है, प्रवर्तितो हम, उससे प्रवर्तित होकर मैं ये रचना कर रहा हूं. हालांकि वराक रूपोपी, वराक मतलब तुच्छ, रूप मैं रूप, गुरु गोस्वामी खुद कह रहे हैं वराक रूप अपि. ये अपि शब्द का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं वराक हूं, पर फिर भी How dare I write? अगर मैं योग्य नहीं हूं, अगर मैं जानता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं, फिर कैसे मैं हिम्मत कर रहा हूं ऐसे ग्रंथ रचना करने की. बोलते मैं क्या करूं, आज्ञा और प्रेरणा से बद्ध हूं. एक तो आज्ञा मिला है मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की ये ग्रंथों की रचना करने की, और मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, उनकी इच्छा को स्थापना करने के लिए पूर्ण भूतले भूतल पे. और दूसरी बात है, इतनी प्रेरणा मिली है मुझे, उन्होंने वो प्रेरित किए हैं और उनकी प्रेरणा से मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं. ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यही कहते हैं, श्रील प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि पता नहीं प्रभु मुझे आप यहां क्यों लाए हैं, जरूर आपकी कोई इच्छा होगी यहां अगर लाए हैं तो, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, पर बद्ध हूं मैं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दिया है कि पाश्चात्य देश इत्यादि इस भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करो, और इसीलिए मैं जा रहा हूं. पता नहीं क्या कहूंगा, वो लोग समझ पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर ये प्रेरणा मिली है और आज्ञा है, इसीलिए मैं कर रहा हूं. वराक रूपोपि. फिर एक्चुअली चलो प्रभुपाद जी के अगर आप ये पढ़ेंगे, पहला पैराग्राफ भक्ति रसामृत सिंधु का, ये जो एक 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 जनरली एक एक पैराग्राफ एक एक श्लोक का सूचित करता है वो, अगर आप देखेंगे. और प्रभुपाद जी अपनी हृदय भी वहां, अपनी हृदय की बात भी वहां लिख रहे हैं उस श्लोकों के साथ. तो भूमिका में शुरुआत मंगलाचरण प्रभुपाद लिखते हैं, इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस. भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य हास्य करुण भयानक वीर रौद्र अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार हैं अखिल रसामृत मूर्ति. परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक रूप से द्वारा तारका पालिका श्यामा ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है. वे प्रभु हम पर कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने की इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो. तो उस श्लोक के तात्पर्य को समझकर प्रभुपाद जी ने अपने हृदय का जो भावनाएं हैं उसको भी दिया है। दूसरे श्लोक, मैं शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूं, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्त रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार करने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। तो समरी स्टडी में उस श्लोक का सार और अपनी हृदय की भावना भी वहां डाल रहे हैं। और दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करने के बाद तीसरा श्लोक, जो तीसरा पैराग्राफ है, उसमें रूप गोस्वामी एक बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसा श्लोक लिखते हैं जो भगवान नारायण को भी सूचित है और सनातन गोस्वामी अपने बड़े भाई को भी सूचित है। वो लिखते हैं, विश्राम मंदिरत्या तस्य सनातन तनोर्मद ईशस्य भक्तिरसामृत सिंधुर भवतु सदायं प्रमोदया के विश्राम मंदिरया तस्य सनातन तनोर्मद ईशस्य, मेरे प्रभु सनातन तनोर जो नारायण भी हो सकते हैं, जो भक्त सागर में लेटे हैं उनके प्रमोद के लिए ये मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। तो सनातन तनोर विष्णु भी हो सकते हैं, नारायण भी हो सकते हैं, जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, और उनके प्रतिनिधि मेरे गुरु सनातन गोस्वामी वो भी इस भक्ति रसामृत सिंधु में लेटकर आनंद ले, मतलब इसका आस्वादन करे, उनके सेवा, उनके जस्ट टू प्लीज हिम, उनको प्रसन्न करने के हेतु मैं ये ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरा बहुत सुंदर श्लोक है और यहां वैष्णवों को प्रणाम, पर बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। कहते हैं कि मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूं, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान है। मगर यानी मगरमच्छ हो गया, मकर प्रभुपाद जी उसको शार्क, मकर जो है सारे मछलियों का राजा है वो मकर, तो प्रभुपाद जी उसके अनुवाद में उसको लिखते हैं शार्क्स, जैसे जंगल जो जंगल का राजा है शेर, ऐसे मछलियों का राजा शार्क। तो वो भक्तों की तुलना, महान भक्तों की तुलना इस मकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले पढ़ता हूं प्रभुपाद जी के अनुवाद, मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूं, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों को तनिक भी परवाह नहीं करते हैं, निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है और नदियों की तुलना मोक्ष के विभिन्न विधियों से। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं जो अंततः सागर में मिल जाता है, उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप में असंख्य जलचर भी हैं। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते हैं जो सागर में आकर मिलती रहती है। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाले नदियों के तुल्य है। इसको समझना है तो ये पहले ये जो तुलना बनाई है कंपैरिजन एनालॉजी, ये एनालॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत विशाल समुद्र है और समुद्र में कई सारी नदियां आ रही है और सम्मिलित हो रही है, अपने सारे पानी वहां आके मिलन हो रहा है। तो सागर में जो मछलियां हैं शार्क, वो भक्तों की तुलना ऐसे बड़े बड़े मछलियां शार्क्स जो केवल समुद्र में मिलते हैं, नदियों में नहीं आते, वो उससे की गई है भक्तों की तुलना। और ये सागर जो है ये भक्ति से की गई है, भक्त रसामृत सिंधु। और जितनी सारी नदियां हैं वो अलग अलग मार्ग हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग कांड, उपासना कांड इत्यादि। तो मायावादी क्या कहते हैं कि नदियां आकर बाद में सागर में मिलती हैं और एक हो जाती है, नदी और सागर में कोई अंतर ही नहीं रहता। तो ये अशास्त्र मायावादम असत शास्त्रम, ये असत निर्णय है, सिद्धांत है। कभी जीव भगवान में मिलकर भगवान नहीं हो जाता, ये एक पहला ही शुरुआत में कहते हैं, ब्रह्मानंद ब्रह्म में लीन, ब्रह्मलीन हो जाना। तो ये लीन होने की बात जो है इसको संबोधित करते हुए बताते हैं कि उनका कहना है कि नदियां आती है समुद्र में मिल जाती है और एक हो जाती है, अपना अस्तित्व खो बैठती है नदी, फिर नदी क्या सागर क्या, सब एक ही है। पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, भक्तगण उस मछलियों के, बड़े बड़े शार्क मछलियों के समान है जो केवल समुद्र में निवास करती हैं और अपना अस्तित्व नहीं खोती, समुद्र में है, समुद्र का आस्वादन कर रही, वहां तैर रही है, कल्लोल मग्नो मुहुर, उसमें आनंद ले रही है, पर लीन नहीं हो जाती। तो ये शार्क जो मछलियां हैं इनकी तुलना से तीन चीज बता रहे हैं। एक, ये मछलियां हमेशा केवल समुद्र में रहती है, समुद्र से कभी इधर उधर नहीं जाती, उनको समुद्र में ही आनंद है, समुद्र का आनंद लेने के कारण और किसी दूसरे आनंद की ओर नहीं जाते। इस तरह से भक्तगण प्रेम का सागर, इसका आस्वादन करने के कारण वो दूसरे कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते, कोई भी दूसरा भौतिक सुख और सिद्धि प्राप्ति का सुख, यहां तक कि ब्रह्मानंद मुक्ति का सुख उनके लिए बहुत तुच्छ है, उसमें उनकी ओर देखते भी नहीं, जैसे समुद्र की ये मछलियां कभी वो नदी की ओर देखती भी नहीं, इस तरह से तो वो एक उच्च कोटि का आनंद ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। और दूसरा, वो कभी भी फिर से वापस दूसरे जो तरीके हैं उसको नहीं अपनाते, ऐसा कभी हम नहीं देखते कि एक उच्च कोटि का भक्त भक्ति को त्याग कर कर्म या ज्ञान मार्ग में आया हो। पर हम देखते हैं कि ज्ञान मार्गी में के लोग जब भक्तों के संग में आकर उसका आस्वादन किए, ब्रह्मज्ञानी लोग, चार कुमार ब्रह्मज्ञानी थे, पर जब उन्होंने विष्णु और जय विजय इनका प्रेममय आदान प्रदान देखा, कितना प्रेम है जय विजय को विष्णु के प्रति, कि उनको बोला गया कि तुमको 7 जन्म भक्तों का चाहिए या 3 जन्म असुरों का चाहिए, बोले हमको 3 जन्म असुरों का चाहिए, जल्द से जल्द वापस आना चाहते हैं आपकी सेवा के लिए। और भगवान कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि सेवक जो भी गलती करता है मालिक को उसका जिम्मेदारी है, मैं अपना हाथ काटने के लिए तैयार। तो जब कुमारों ने देखा ये आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच। और जैसा वर्णन है भागवत में कि मकरंद तुलसी, जो भगवान के चरण कमलों में तुलसी और अलग प्रकार के जो सुगंधित ये थे, उसका जब उन्होंने आस्वादन किया तो तुरंत भक्त बन गए वो। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मज्ञानी थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था इस दुनिया से, पर जब वो भागवत का श्रवण किए, भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन श्रवण किए, वापस आ गए वेदव्यास के पास और बोले और सुना हमको। तो हम देखते हैं ये बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जो नदी में तैर रहे थे, जिनको मालूम नहीं था समुद्र क्या है। मायावती कहते हैं नदी ही वो मार्ग है और समुद्र ही जो है वो ब्रह्म में लीन होना है, पर अस्तित्व कभी नहीं खोते। नदी नदी है, नदी की मछलियां नदी है, नदी में ही मछलियां ही है, समुद्र समुद्र ही है, समुद्र की मछलियां मछलियां ही है। मछलियां कभी समुद्र नहीं बन जाती, नदी की मछलियां नदी नहीं बन जाती। तो इस तरह से अस्तित्व नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। अर्जुन ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, सारे राजा नहीं थे, भविष्य भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये तुरंत इस जगह पे मतलब ठोक कर ठान कर बोलते हैं कि ऐसे महान भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं जिनके आनंद के लिए लिखा गया है और जो इसका आस्वादन कर सकते हैं वो मछली के समान है। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण चीज कि ये मकर मछलियां जो है ये ऊपर ऊपर में नहीं तैरती समुद्र में, इतनी नीचे तैरती है कि कोई मछुआरे के जाल में नहीं फंसती है। कभी मछुआरा शार्क को नहीं पकड़ा है, क्योंकि मछुआरे सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहते वो, पर ये मछलियां जो सागर में रहती है इतने नीचे रहती हैं कि इनको मछुआरे का जो जाल है उसके इस पे कभी नहीं आती। इसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्त जो इस भक्ति रस अमृत के सिंधु में आस्वादन कर रहे हैं, वो माया का जाल जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो बड़ा भय है, जो मछलियां ऊपर ऊपर तैरती उनके सबसे बड़ा भय है कि मछुआरा आ नहीं जाए, उसके नेट में फंस नहीं जाए, उसके जाल में फंस नहीं जाए। पर ये मछलियां जो अंदर थी उनको कुछ लेना देना है, उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनको उनको कुछ असर ही नहीं पड़ता। इस तरह से जो भय है जन्म मृत्यु काल के प्रभाव से आने वाला भय उनको नहीं है, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से भक्ति का आस्वादन हो रहा है। भक्ति रस अमृत, वो अमृत है मतलब आस्वादन करने में बहुत मधुर है, और अमृत यानी उसका मरण कभी नहीं है, इसीलिए उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हम देखते हैं भीष्म पितामह मृत्यु आए, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हरिदास ठाकुर कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम देखते हैं, वो अंतिम वीडियो आप देखोगे तो शरीर आप माया देवी शरीर के ऊपर अपना कार्य, समय का अपना शरीर के ऊपर कार्य कर रहा है, भक्त अपना कार्य कर रहा है, बस तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा, चलता रहता दोनों का। प्रकृति शरीर के ऊपर अपना कार्य कर रही है और भक्त जो है भगवान के साथ अपना कार्य कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं, शरीर है ठीक है। तो इस तरह से फिर ये एक श्लोक, फिर दूसरा श्लोक है अभी आशीर्वाद, उसमें कहते हैं हां श्री रूप गोस्वामी अपने गुरु श्री सनातन गोस्वामी से भक्त रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों से करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्तियोग विज्ञान में दखल देते हैं। वे इनके तर्कों तथा विवादों की तुलना सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से करते हैं। जिस प्रकार सागर के बीच उठने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से बहुत ही कम क्षति पहुंच सकती है, उसी प्रकार जो लोग भगवत भक्ति में विरुद्ध हैं और जो चरम दिव्य अनुभूति के विषय में अनेकानेक दार्शनिक मत प्रस्तुत करते हैं, वे भक्ति के इस महान सागर को तनिक भी विक्षुब्ध नहीं कर सकते। बड़े आनंद के साथ कह रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है इन लोगों को कुछ समझेगा भी नहीं और ये इसको कुछ स्पर्श भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी हो, इसको बोलते हैं वड़वाग्नि, वड़वाग्नि बोल के ऐसे वेदों में वर्णन है कि औरव नाम के एक भार्गव भृगुवंश के एक व्यक्ति थे और उन पर कार्तिवीर ने आक्रमण किया, तो उन्होंने एक ऐसा अग्नि का निर्माण किया औरव ने, जो भृगुवंश के थे, कि पूरे ब्रह्मांड को जला लेने वाला अग्नि था वो। तो सब भार्गवों ने बोला, अरे रे रे ऐसा मत करो भाई, उसको फेंक दो कहीं, तो उन्होंने उसको समुद्र में डाल दिया। तो साउथ पोल, हां दक्षिण ध्रुव, तो साउथ पोल में कहा जाता है कि एक ऐसा छेद जो है वहां, जहां से नीच जो निम्न स्तर के लोगों हैं वहां से पाताल, वो अग्नि वहां से आती है, पर समुद्र होने के कारण उस अग्नि का कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इस तरह से कितने भी ज्वालामुखी हो, अगर समुद्र में एक घोड़े जैसा है वो, उसके मुंह से निकलता है, पर ऐसे जितनी बड़ी ज्वालामुखी भी क्यों ना हो, समुद्र में होने के कारण कुछ उसको असर नहीं पड़ता, बुझ जाता है। इसी तरह से तार्किक मीमांसक कर्मवाद या ज्ञानवाद, ऐसे जो अलग अलग वाद है, निर्विशेष शून्यवाद, अलग अलग प्रकार के वाद जो संशय भगवान की जो शुद्ध सिद्धांत है उसके प्रति जो संशय है, किसी को संशय है भगवान ऐसा भी है क्या, ऐसा है क्या, भगवान सर्वव्यापी है क्या, तो जो भी संशय है उसको उन्होंने एक शुद्ध सुंदर फिलॉसफी बना दिया, उसको कहते हैं वाद। और उस वादों से जो भ्रमित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु मुंह तोड़ जवाब है के जो इस जो जिसको ये ग्रंथ मालूम है वो इन वादों में कभी नहीं फंसेगा, उसको कुछ असर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार समुद्र में अगर ज्वालामुखी भी प्रकट हो जाए तो उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, तुरंत बुझ जाएगा। तो इस तरह से, और ये प्रार्थना करते हैं हमेशा हमेशा के लिए ये ग्रंथ रहे इस दुनिया में, क्योंकि जब तक ये ग्रंथ सागर रूपी एक ग्रंथ रहेगा इस दुनिया में, तब तक ऐसे तार्किक लोग जो गलत सिद्धांतों से दुर्भाग्यवश लोगों का जीवन को सर्वनाश कर देते हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है उनका उल्टे सीधे सिद्धांतों के पीछे। तो प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि ये ग्रंथ हमेशा रहे ताकि सब लोग इसका फायदा ले, और ये तार्किक लोगों का जो ज्वालामुखी जैसे उनसे मुंह से आग निकल रहा है, जो सबको जला के, सबके मनुष्य जीवन को जला के राख करने वाला है, उसका कोई असर न पड़े इस भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। और ये सत्य है, जिसने इस भक्ति रसामृत सिंधु के एक बिंदु भी आस्वादन कर लिया है, प्रभुपाद जी के शिष्यों के भी हम देखते हैं, पाश्चात्य देश के थे, उनको ज्यादा कुछ वेदांत शुरुआत में कुछ मालूम नहीं था, पर फिर भी किस तरह से तत्व को जानने के कारण, भक्ति के रस को आस्वादन करने के कारण पूरे विश्व भर में जाते थे, बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ आसानी से चैलेंज करके उनका मुंह जो ज्वालामुखी जैसा ध्वंस कर रहा था सबको, उसको बंद कर देते और कुछ असर नहीं पड़ता उन पर। तो ये क्योंकि ये निष्कर्ष है, नाना शास्त्र विधारण ही कनिपुणव सद्धर्म संस्थापको। तो इस तरह से ये प्रार्थना करते हैं और अंत में, हां, और दूसरा है जिह्वाम, ये अग्नि के जिह्वा होती है, अग्नि की जो लपटें होते हैं उसको बोलते हैं जिह्वा। तो इसी तरह से रूप गोस्वामी जिह्वाम, और संकीर्तन भी एक यज्ञ है, उसकी भी जिह्वा होती है। कहा जाता है कि यज्ञ में जो अग्नि आती है उसके सात प्रकार की अग्नि होती है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुध्रुम, वर्णा, उग्र एंड प्रदीप्त, सात प्रकार की अग्नि है। इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि संकीर्तन अग्नि जो है, यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ, तो इवन दिस संकीर्तन हैज सेवन टंग्स, अग्नि के लपटे हैं। और क्या ये लपटे हैं? सात फायदा जो होते हैं संकीर्तन से, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपरम, विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ये सात प्रकार की बेनिफिट्स, सेवन इन वन। तो ये संकीर्तन यज्ञ की जो अग्नि है, ये अग्नि जो है उसको मिटा सकती है, और ये अग्नि जो है वो सारे अनर्थों को नाश करके कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकती है। तो इस तरह से और अंत में रूप गोस्वामी की प्रार्थना यह भी है कि पूर्ण रूप से यह अग्नि, ये जो ज्वालामुखी की अग्नि है, नष्ट हो जाए। जब सार्वभौम भट्टाचार्य, बड़े तार्किक थे वो, पर जब उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु का आस्वादन किया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति क्या है समझ में आई, तब वो कहने लगे, तार्किक श्रीगाल संगे भ्यू भ्यू करी, एवे से ही मुखे सदा बोली कृष्ण हरि। पहले मैं एक श्रीगाल जैसे भ्यों भ्यों करता था, मैं तार्किकों के साथ बैठकर मैं भी तर्कवाद करता था कि भगवान नहीं है, कलयुग में कैसा अवतार लेते हैं, कौन से शास्त्र में है। तार्किक श्रीगाल संगे भ्यू भ्यू करी, यही मेरा काम था। पर एबे से ही मुखे, अभी उसी मुख के, पहले ज्वाला निकल रहा था, अभी अभी से ही मुखे सदा बोली कृष्ण हरि, कृष्ण हरि का नाम आ रहा है मेरे। वही फायदा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से सबको हो सकता है। और अंत में जो लास्ट श्लोक है, फिर से रूप गोस्वामी लिखते हैं कि मैं इस ग्रंथ लिखने के लिए अयोग्य हूं, पर फिर भी रचना मैं कर रहा हूं। और इसका तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त रसामृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं, और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। हम बड़े प्रचारक नहीं है। रूप गोस्वामी ऐसे सुंदर ग्रंथ लिखते हुए भी कभी सोचते नहीं कि मैं इतना बड़ा प्रचारक हूं। तो इस तरह से इवन सारे महान आचार्यों के जीवन में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमारे प्रमुख आचार्य, संस्थापक आचार्य। संस्थापक आचार्य का मतलब है हम जो भी करते हैं उसकी जो बेसिक है, दैट इज सीन इन प्रभुपाद, यू कैन सी इट एक्चुअली। फाउंडर आचार्य, द फाउंडेशन ऑफ ऑल अवर एक्टिविटीज, थॉट्स, वर्ड्स इज फुल्ली मैनिफेस्ट इन दैट पर्सनैलिटी। कभी ये नहीं सोचे कि मैंने इतना बड़ा इसकी स्थापना की, इस पूरे विश्वभर में मैंने प्रचार किया। रूप गोस्वामी, हम रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी ऐसे नहीं समझते, बस महाप्रभु की कृपा है कुछ हुआ, मेरे बावजूद भी हुआ। आपने एक प्रभुपाद के शिष्य हैं स्वरूप, नहीं 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 रविंद्र स्वरूप प्रभु, रविंद्र स्वरूप प्रभु कहते हैं कि यू शुड बी अमेज दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज गोइंग ऑन डिस्पाइट अस, हमारे होते हुए भी प्रचार हो रहा है, मतलब बंद हो जाना चाहिए हम जैसे व्यक्ति के कारण, बट फिर भी चल रहा है, इसका मतलब जरूर कृष्ण की कृपा है। हम जैसे लोगों के बावजूद भी चल रहा है ये। रविंद्र स्वरूप प्रभु कभी कभी ए वेरी शार्प, वेरी डीप कमेंट्स बोलते हैं वो। एक बार बोल रहे थे, अगर मेरे को इस्कॉन में कुछ करना है तो लॉयर बनना है, कोई भी किसी को कुछ मत चाहिए तो सिर्फ मत बताओ और मैं प्रभुपाद जी का कोटेशन बना के दे दूंगा मैं उसको, आपको क्या करना है बोलो और जितना कोटेशन चाहिए मैं सप्लाई करूंगा, ये अगर बिजनेस करूंगा ना बहुत हो जाएगा मेरा, इस्कॉन में पैसा बना सकता हूं। तो दिस इज ए डिवोटी इज फीलिंग दैट डिस्पाइट अस इट इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट मीन्स कृष्णा इज रियली मर्सीफुल। जैसे कोई एक फॉरिनर आया था, बोला अभी मेरे को विश्वास हो गया भगवान है, कि इंडिया में ये सब होते हुए भी सब ठीक ठाक चल रहा है, इसका मतलब जरूर भगवान है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण, और ये सात श्लोक में आने वाले जो सात श्लोक हैं, इसमें शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन, शुद्ध भक्ति क्या है इसकी परिभाषा बता रहे हैं, और ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं तो कहूंगा कि आप सबको, अगर आप कहेंगे कि मैं भक्ति रसामृत पढ़ने की इच्छा रखता हूं या भक्ति रसामृत पढ़ना चाहता हूं या भक्ति रसामृत पढ़ा हूं, और अगर आप बोलेंगे कि ये श्लोक आपको नहीं मालूम, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। ये श्लोक इस परिभाष सूत्र ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु, जैसे भागवत का परिभाष सूत्र है एते चाम शकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। परिभाष सूत्र का मतलब है इस ग्रंथ के कोई भी श्लोक को समझना है तो इस श्लोक से संबंध में देखो, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो, अगर यह निकाल दिया तो और सब इररिलेवेंट हो जाएगा। तो कोई भी चीज इस भक्ति रसामृत सिंधु के ग्रंथ में समझना है तो इस श्लोक के तुलना से, इससे संपर्क में देखो उसको, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, नहीं तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ फर्क नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये श्लोक अभी जो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, पूर्व भाग के 11वां श्लोक पहला भाग, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसको हमारे हृदय में लिख के रखना चाहिए, हमारे कपाड़ में लिख के रखना चाहिए, हमारे मन में लिख के रखना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु के ग्रंथ अगर नोट्स बना रहे तो उसके ऊपर सबसे पहले यह श्लोक होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति की परिभाषा, भक्ति है क्या और उत्तम भक्ति कौन सा है। अलग अलग स्तर की भक्ति होती है पर उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है। तो पहला जो दो भाग है श्लोक का, पहला जो दो लाइन है वो तटस्थ लक्षण बता रही है, और दूसरा जो भाग है श्लोक का, दूसरा जो दो लाइन, अंतिम दो लाइन, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स और मुख्य लक्षण बता रही है। भक्ति मतलब क्या? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तीन चीज होना चाहिए, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये भक्ति है। अगर ये तीन चीज नहीं है तो भक्ति है ही नहीं वो। तो सबसे पहले क्या, कृष्ण, कृष्ण होना चाहिए उधर, कृष्ण नहीं तो भक्ति है ही नहीं वो। तो कोई कहेगा ये तो बहुत हो गया यार, केवल कृष्ण, दिस इज टू एक्सक्लूसिव। तो अगर कोई कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो भक्त नहीं है, क्योंकि है इट्स ए फैक्ट। उत्तम भक्ति मतलब कृष्ण अनुशीलनम। तो फिर तो हमारा सारा प्रेम कृष्ण के प्रति होना चाहिए। ये जो प्रेम है, इसको प्रेम के आस्वादन करने वाले कृष्ण ही एक व्यक्ति है। तो क्या कृष्ण एक मामूली व्यक्ति है? नहीं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। तो फिर कृष्ण है कौन? तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह, हां, शुद्ध भक्ति है कृष्ण के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं। तो सारे जो मुख्य लक्षण है उसमें से भी मुख्य लक्षण यह है, सबसे पहले कृष्ण केंद्र होना ही जरूरी है। तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, केवल कृष्ण, तो ज्यादा एक्सक्लूसिव हो गया ये। तो अगर कोई बोलेगा तो अगर हम और सब लोगों को प्रेम करेंगे तो क्या भक्ति है ही नहीं? ये तो बहुत, केवल कृष्ण और किसी को करे तो भक्ति नहीं है। तो वी कैन लव ओनली कृष्ण, बट कृष्ण इज नॉट ऑर्डिनरी। हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, यस, बट ये कृष्ण जो है ये एक मामूली व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ कृष्णा वी रेफर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अलॉन्ग विथ हिज मेनी एक्सपेंशंस। रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत्। कृष्ण यानी उनके सारे अवतार भी हो गए, बलदेव, संकर्षण, ये वो, नरसिंह, वामन। तो दूसरे शब्दों में उनके सारे जो अंश और अंश जो कला है उनके प्रति भी जो अगर हमारा प्रेम वो उनको हम वहां डिपॉजिट करते हैं वो भी भक्ति है। तो ऑफ कोर्स कृष्ण का मतलब है उनकी अंतरंग शक्ति, उनकी बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। कृष्ण का मतलब उनकी शक्ति के साथ ही है वो, अभिन्नत्वात् नामनामिनः। तो ये तो बहुत ऑल इंक्लूसिव हो गया अभी। तो कृष्ण मतलब उनकी अंतरंग शक्ति, कृष्ण मतलब उनकी बहिरंग शक्ति, कृष्ण मतलब उनकी तटस्थ शक्ति। तो मतलब किसी से भी प्रेम करो तो कृष्ण ही है, कृष्ण की शक्ति है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो एक जगह ऐसा लगता है कि एकदम एक्सक्लूसिव, ओनली कृष्णा, नो वन एल्स। और फिर अगर बड़ा डेफिनेशन लिया तो कृष्ण मतलब सब कुछ, कृष्ण से अभिन्न कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए इसको समझाते हुए प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड, हां, सो दीज थ्री कैटेगरीज इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। कृष्णा इन अदर वर्ड्स मीन्स एवरीथिंग एंड इंक्लूड्स एवरीथिंग। Obviously, it is over-inclusive to say that anything and everything is a valid recipient of pure devotional service. अगर बोलेंगे किसी के भी प्रति अगर प्रेम हो जाए तो वो भी भक्ति है, वो भी नहीं। तो अंत में प्रभुपाद उसका बैलेंस करते हैं, कहते हैं, generally, however, we should understand Krishna to mean Krishna and his personal expansions. Krishna और उनके जो विस्तृत रूप हैं, वैयक्तिक विष्णु तत्व जो भी विष्णु तत्व उनके विस्तृत रूप हैं. सो कृष्णा इंक्लूड्स ऑल सच एक्सपेंशंस एज वेल एज हिज प्योर डिवोटीज. और कृष्ण के संबंधित चीज, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण लीला, उनके धाम और उनके नित्य पार्षद के प्रति भी हमारी अगर भक्ति है, वो भी भक्ति के इसमें आ जाता है, भक्ति के अंदर अंतर्गत आ जाता है वो. कृष्णास पैराफर्निलिया एंड इज ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, उनका दिव्य धाम और उनसे संपर्कित चीजें जो हैं, तदीया नाम, उनके प्रति भी जो हमारी सेवा है, भक्ति है, वो भी एक्चुअली कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आ जाती है. तदीया नाम, उनके भक्तों के प्रति हमारी भक्ति भाव, श्रीमती तुलसी महारानी के प्रति हमारी भक्ति भाव, तदीया नाम. पर एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा एंड डायरेक्ट कनेक्शन, ऐसा नहीं इनडायरेक्ट. इनडायरेक्टली माइक्रोफोन से मैं प्रेम करता हूं कृष्ण से नहीं, क्योंकि यह भी तो कृष्ण से संबंधित है. संबंधित है पर डायरेक्टली नहीं है. इनडायरेक्टली सब कुछ कनेक्टेड है, पर डायरेक्टली जो चीजें कनेक्टेड है, कृष्ण और उनके विस्तृत रूप और उनसे संबंधित चीजें डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, उनके प्रति जो हमारी भक्ति भावना है वो एक्चुअली भक्ति के अंतर्गत आ जाती है. तो इसका मतलब हो गया कृष्ण. दूसरा महत्वपूर्ण बात है अनुशीलनम. अनुशीलनम जैसे इसका मतलब एक भी है कि कभी ना हम देखते हैं कोई राम भक्त है, कोई नरसिंह देव का भक्त है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अनुपम या मुरारी गुप्त को बोला, धन्य है वो भगवान जो अपने भक्त को नहीं छोड़ते, धन्य है वो भक्त जो भगवान को नहीं छोड़ते. तो ये हो गया. और दूसरा अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम. शील, ये जो धातु है शील धातु, शील धातु का मतलब है एक्टिविटी. एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल, दूसरा भावात्मिक रूप से. पर भावात्मिक रूप से अभी जो हमारी भावनाएं हैं वो शुद्ध नहीं है. वो जब भाव स्तर पर पहुंच जाएंगे तब एक जगह बैठे बैठे हमारी भक्ति हो सकती है. जैसे कभी कभी महान भक्त जो प्रेमी भक्त हैं, जो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव, साधना भक्त नहीं भाव भक्त, समाधि में गए और भगवत धाम में डायरेक्टली उनकी सेवा चल रही है, समाधि में बैठे हैं इधर पर वहां सेवा चल रही है, ऐसे लोगों की सेवा ठीक है. जैसे एक ब्राह्मण था, गोदावरी के तट पर बैठकर मानसिक रूप से उसने सेवा कर रहा था और स्वीट राइस बनाया और हाथ लगाया जल गया, और जल के देखा एक्चुअली हाथ जल गया था. पर अनुशीलनम, एक साधक के लिए अनुशीलन मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी. सिर्फ हां भक्ति है भक्ति है, पर अगर क्रियाशील नहीं है हम लोग, क्या कर रहे हैं? दैट्स व्हाई इसीलिए प्रभुपाद उसको अनुवाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा. बिना सेवा के वो भक्ति है नहीं, सिर्फ बैठे बैठे. इट्स नॉट सम इमेजिनेशन. भक्ति एक वो मनगढ़ंत बात नहीं है, भक्ति मीन्स प्रैक्टिकल सर्विस. तो अनुशीलनम, शुद्ध भक्ति का मतलब है हमारा प्रेममयी सेवा कृष्ण के प्रति करना. तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं एज सून एज वी से कल्टीवेशन वी रेफर टू एक्टिविटी, विथाउट एक्टिविटी कॉन्शियसनेस अलोन कैनॉट हेल्प अस. सो एक्चुअली कार्यकलाप कार्यशील होना चाहिए. दो प्रकार की अनुशीलन बताते हैं प्रभुपाद, एक प्रवृत्ति आत्मिका, दूसरी निवृत्ति आत्मिका. प्रवृत्ति आत्मिका मतलब अनुकूल्यस्य संकल्पो, ये चीज हमको करना चाहिए, नवदा भक्ति करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति करनी चाहिए. और निवृत्त आत्मिका मतलब अपराध से बचना चाहिए, धाम अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, इनसे बचना. तो अपने मन से, मनसा वाचा कर्मण, मन वाणी और कर्म से कार्यशील होना चाहिए अनुकूल चीजों को अपनाने के लिए, और मन वाणी और शारीरिक रूप से प्रतिकूल चीजों को त्याग देना चाहिए। यह भक्ति है। तो कृष्ण अनुशीलनम, अच्छा यह शीलनम हो गया, कृष्ण और शीलनम। अनु मतलब क्या? ठीक है, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं और शीलनम मैं कार्यरत हूं, पर क्या मालूम कृष्ण के लिए कर रहे हो? किसको पता? तुम्हारा मन कह रहा है कि कृष्ण कृष्ण के लिए कर रहे हो, पर व्हाट इज द गारंटी दैट कृष्णा इज एक्सेप्टिंग दिस सर्विस? तो इसीलिए बोलते हैं कृष्ण अनुशीलनम। ये अनुशब्द का अर्थ है कि क्योंकि भक्ति जो है वो केवल भगवान और उनके भक्तों की कृपा से मिल सकती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, बिना भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा के बिना ये भक्ति उपलब्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंतरंग शक्ति है। तो बिना परंपरा के मदद से ये शीलनम हमारे कार्यकलाप एक्चुअली कृष्ण को टच भी नहीं करते, पहुंचते भी नहीं है। ये अनुशब्द जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने अमेरिका के लाया, अमेरिका से लाया हो, और उसका जो प्लग पॉइंट है वो 110 वोल्टेज वाला है, और इंडिया का जो है वो 250 का है, तो ये मैचिंग ही नहीं होता है। इधर लगाया तो ये उड़ जाएगा या वो कुछ खत्म हो जाएगा, तो उसके बीच में एक इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस होने के कारण वो और ये जुड़ता है। तो हम बहिरंग शक्ति वाले और भक्ति तो शुद्ध अंतरंग शक्ति है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाला अनुशीलनम, और वो है गुरु परंपरा। हमारे कार्यकलाप फालतू हैं, कुछ नहीं उसमें, भक्तिहीन है, पर जब गुरु को अर्पण करते वहां से वो ट्रांसफर होके एक्चुअली शुद्ध बन जाता है। जैसे हम लोग खाना बनाते फिर तुलसी महारानी को डालते, तुलसी डाले तो ऑटोमेटिकली कृष्णा स्वीकार करते, हमारा क्या स्वीकार करेंगे, बट तुलसी महारानी जब ऑफर करती है तो ठीक है चलो। तो दिस इज द प्रॉपर वे अनुशीलनम। तो शीलनम जो है हमारा, सिर्फ शीलनम कार्यकलाप मनसा बुद्धि कर्मणा इत्यादि, ये कृष्ण को पहुंचता नहीं है कृष्ण तक, क्योंकि हम अशुद्ध हैं अभी और हमको नहीं मालूम, इसीलिए अनु शब्द लगाया गया है जो कृष्ण को से जोड़ता है। जो लोग जो कृष्ण के पालन करते हैं वो गुरु परंपरा के द्वारा चलते हैं। हम भक्ति करते हैं एक सदगुरु के निर्देशन में, जो खुद अपने गुरु और उस गुरु उसके गुरु उसके गुरु चल के भगवान तक जाता है, और इस तरह से वो भगवान की इच्छा को ही हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से हमारी क्रिया जो है वो भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार हो रही है। क्या पता कि हमारी इच्छा है कि भगवान की इच्छा है? कभी कभी हमारी इच्छा होती है पर उसको हम लोग एक अच्छा पैकेजिंग कर देते हैं, भगवान की इच्छा थी। ठीक है तुम तो खुश रहोगे, पर एक्चुअली भगवान उसको स्वीकार करे क्या, क्या मालूम? हाउ डू यू नो? केरला में एक आदमी 50-60 मर्डर किया, उसने कोर्ट में लाया गया तो बोला अंदर से आवाज आई मेरे को भगवान की, और कसम खुदा की मैंने उसी लिए किया। हु इज टू जज? उसने बोला अंदर से आवाज आई, मार डालो इसको। मैंने मार दिया, ऐसे ही मारते जा रहा। अरे तू पागल हो गया है, तेरा मन बोल रहा है सब उल्टा सीधा। ऑफकोर्स गुरु साधु शास्त्र, ये फनल है, फनल जैसा है। शास्त्र में भगवान ने अपनी इच्छा को बताई है, शास्त्र ने भगवान ने सारी अपनी इच्छा बताई है। ये अच्छा लगता है मेरे को, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सततम कीर्तयंतो माम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यत करोषी दशनाशी यज जुहोषी ददासी, बहुत सारे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सारे वेदों में भगवान की इच्छाएं ही प्रकट है, भगवान बोल रहे हैं मेरी इच्छा है और आप कर रहे हो। पर उसके बाद साधु शास्त्र, साधु गुरु वाक्य, साधु जो है उसमें से सार निकालते हैं, बोलते हैं ये उसका उद्देश्य यही है। बहुत सारे कार्यकलाप हैं बट उनका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द इंटरनल स्पिरिट ऑफ द लॉ, देर इज ए लेटर ऑफ द लॉ, देर इज ए स्पिरिट ऑफ द लॉ। कोई भी एक कार्य हम करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये करो, करने का उद्देश्य है उसकी हृदय की बात को जानकर क्यों कहा गया है, उसलिए करना उसको। वो साधु जानते हैं महा धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न सपंथा, और ये महाजन की परंपरा है। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने 12 महाजनों का नाम लिया, तो किसी ने कहा, शिष्यों में से एक कोई बैठा हुआ था, बोला प्रभुपाद आप तो 13वें महाजन है। प्रभुपाद ने बोला तुम 14वां। इसका मतलब क्या है, मैं अपने भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज की कर रहा हूं, वो उनके गुरु मां की कर रहे, और तुम अगर वो चलोगे तो तुम भी परंपरा में आ गए। तो इस तरह से ये अनुशीलनम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट इज नॉट भक्ति। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से कुछ तो कर रहे हैं, पर शायद श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते। रूप गोस्वामी लिखते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, इन विधि के अनुसार अपनी मन की बातें करोगे तो एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता, समाज में उत्पात मचाएगा ये भक्ति के नाम पे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वी कैन ऑफर मेनी सर्विसेज विथ आवर बॉडीली एक्टिविटीज बट ऑल सच एक्टिविटीज मस्ट बी इन रिलेशनशिप विथ कृष्णा। दिस रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय कनेक्टिंग वन सेल्फ विद द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा इन डिसाइपलिक सक्सेशन। तो इसका मतलब यह है कि दीक्षा एक सदगुरु से, वॉट डज इट एंश्योर, जब दीक्षा लिए तो एक चीज गारंटी है, क्या, कुछ हद तक शुद्धता और निस्वार्थता, उस सेवा की शुद्धता और उस सेवा की निस्वार्थता हो जाती है उसके अंदर दीक्षा के द्वारा, नहीं तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ तो होगा इच्छा, मन कह रहा होगा, अहंकार कह रहा होगा, क्या मालूम, और निस्वार्थता नहीं होती उसमें। तो बिना दीक्षा के हम कृष्ण से जुड़ नहीं सकते और यह भी नहीं जान सकते कि एक्चुअली क्या प्रश्न प्रसन्न कर रहा है भगवान को, कर रहा है कि नहीं हमारी सेवा। हम तो कर रहे हैं, मन बुद्धि मन वाणी और शरीर तो लगी हुई है, पर एक्चुअली कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं क्या। इसीलिए शब्द कृष्ण, एक तो कृष्ण कौन है बताया कि कृष्ण यानी कृष्ण और उनके सारे विस्तृत रूप और उनसे डायरेक्टली संबंधित चीजें, उनके धाम और उनसे संबंधित वस्तु, तो वो भक्ति है शुद्ध में। और शीलनम एक्चुअली कार्यशील होना मन से वाणी से और शरीर से। और तीसरा चीज है ये शीलनम अनुशीलनम होनी चाहिए, भगवान की इच्छा गुरु परंपरा से हमको समझ में आती है और उनकी इच्छा को करना, ये भक्ति हो गई। और यह भी समझाया जाता है कि क्योंकि भगवान की इच्छा जब कर रहे हैं हम लोग तो वो एक्चुअली अंतरंग शक्ति हो जाती है, अंतरंग शक्ति के अंतर महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। नहीं तो क्या है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचित सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, प्रकृति मोहिनीम आश्रिता। हम अभी माया से बद्ध हैं, हमें नहीं मालूम कि भगवान क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर महात्मानुस्मान पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। तो इस तरह से कोई भी कार्य जब कृष्ण भावना में होता है वो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है, और वो शक्ति और स्फूर्ति भक्ति जो है वो कृष्ण से ही आती है। एक्चुअली वो कृष्ण से ही आ रही है। भक्ति जो है, भक्ति की जो शक्ति है वो एक्चुअली कृष्ण से आ रही है। और कैसे उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो परंपरागत, जैसे उदाहरण के लिए जैसा ये प्लग पॉइंट है इधर, बहुत सारे प्लग पॉइंट है उधर। अब प्लग पॉइंट में करंट है कि नहीं क्या मालूम? सिंपल, उंगली डालो पता चलेगा। बहुत कॉस्टली पर सिंपल, अगर उसमें लगाया लाइट जल गया, इसका मतलब समझने का कि वो कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? वो प्लग पॉइंट तार से जुड़ा हुआ है, तार खंबे से जुड़ा हुआ है, वो खंबे का तार वहां से जनरेटर से जुड़ा हुआ है। बीच में कहीं भी कट गया तो ये सिर्फ नाम का प्लग पॉइंट हो जाएगा, कुछ उसमें काम नहीं करेगा। तो इस तरह से जनरेटर, भगवान कहते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने, इस तरह से परंपरागत आ रहा है। वो अंतरंग शक्ति का करंट जो है ये परंपरा से बहता है। दूसरा जो है कटा हुआ है, वो उसमें कुछ काम नहीं करने वाला, अंतरंग शक्ति नहीं है वो। तो भगवान ने चार लाइन छोड़ा है भौतिक संसार के अंदर, चार बड़े बड़े लाइन छोड़ दिया है करंट का। ब्रह्मा जी को बोले तुम एक स्टेशन चलाओ, जनरेटर के चार पावर स्टेशन बना के छोड़ दिया है। शिव जी को बोले तुम एक चलाओ, लक्ष्मी जी को बोले तुम एक चलाओ, और चार कुमार को बोले चलो तुम लोग एक चलाओ। चार बोनाफाइड पावर स्टेशन है, और वो पावर स्टेशन से परंपरागत है, वो इधर टावर है, बड़े बड़े टावर, और उनसे जो संदेश आता है वो वायर है, एक गुरु से दूसरा गुरु। और गुरु यहां बड़े बड़े टावर हैं, देखते हैं ना बड़े बड़े, आप कोल्हापुर से बाहर जाएंगे शहर के बाहर, बड़े बड़े टावर होते हैं, और वहां से वो करंट आता है। बीच में तूफान में एक उखड़ गया तो यहां सब बंद, कोल्हापुर का सप्लाई बंद। तो वो टावर से आता है, और वहां से एक खंभे में आता है, और एक खंभे से हमारा प्लग पॉइंट, और कनेक्ट करो तो वहां का करंट इधर आ जाता है। तो ये एक्चुअली अंतरंग शक्ति भगवान की इस तरह से आती है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इज ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दिस स्ट्रेंथ कैन बी स्पिरिचुअलाइज बाय द मर्सी ऑफ बोथ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। शक्ति मतलब ताकत। वो ताकत कहां से आती है? वो उसका आध्यात्मिक हो जाता है जब वो गुरु और कृष्ण से संपर्कित हो जाता है। और लास्ट में एक महत्वपूर्ण चीज, ये जो एटलीस्ट ये प्राइमरी जो भक्ति है उसका एक और लक्षण है, 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण पहला, दूसरा शीलनम, कार्यकला, कार्यरत होना, और वो कार्यरत अनुशीलनम, भगवान के गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई आज्ञा के अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए होना। तो कृष्ण अनुशीलनम, और तीसरा है अनुकूलन। अगर आप कृष्ण की इच्छा को पूर्ण कर रहे हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए वो आपका उद्देश्य। कृष्ण को अगर आप प्रेम करते हो कृष्ण से, जो भक्ति का लक्षण है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, आनुकूल्येन, आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि कृष्ण इससे प्रसन्न हो। क्योंकि अभी एक सवाल उठता है, कभी कभी असुर लोग भगवान से लड़ते हैं और भगवान उस लड़ाई से प्रसन्न होते हैं। उनका भी कोई इच्छा होती है लड़ाई करने के लिए, इसीलिए इस भौतिक संसार में आते हैं। और असुर लोग लड़ते हैं और भगवान उससे लड़ते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आनंद आता है। तो क्या सारे असुरगण जिन्होंने भगवान से लड़ा वो भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, पर ये भक्ति नहीं है क्योंकि उनकी भावना अनुकूल नहीं थी। उनकी भावना भगवान को मारने के लिए थी। यह भगवान की महिमा, भगवान की महानता है कि उन्होंने थोड़ा आनंद लिया, जैसे कभी कभी बिल्ली चूहे के साथ खेलती है मारने से पहले, उसको आनंद आता है, थोड़ा मजा आता है, और बाद में बहुत हो गया तेरा नाटक। तो इस तरह से भगवान थोड़ा खेलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो दो चोर लोग आए सब लूटने के लिए, और बेटे बोले वे ले तेरे को संदेश खिलाएंगे, ये ले, हाथ में दे दिया उसको एक संदेश और बैठा दिए कंधे पे और भागने लगे, घूमे 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 घूमे। ऑफ कोर्स ऐसा भगवान ने फिर आया कि कहां भी घूमते थे वापस हो यहां थे। पिछली बार हमने बहुत सुंदर ये नाटक देखा, बोल कहां भी घूमेगा वापस वही आए। तो उनका इच्छा क्या था, उनका इच्छा सेवा नहीं, उनको फ्री राइड मिला भगवान को बिना पैसे के। अभी वो हम देखा, मैं इसमें ऐसा घुमाते वहां रंकाला के बगल में ऐसा चक्र जैसा उसमें बैठा दिया, घुमाया तो 50 रुपया जो भी है 10 रुपया जो, तो फ्री में मिल गया भगवान को। भगवान ने आनंद लिया किसी के ऊपर बैठ के घूमना थोड़ा, पर उनका उद्देश्य आनंद देना नहीं था, उनका उद्देश्य था चोरी करना, तो भक्ति नहीं है। उनको अज्ञात स्वीकृति मिली होगी पर वो भक्ति नहीं है, क्योंकि अनुकूल लेना नहीं था। तो अनुकूल भावना होनी चाहिए, पर कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान भक्त सेवा कर रहे हैं और भगवान उससे क्रोधित हो गए। यशोदा माई भगवान को दूध पिला रही थी और उधर दूध उबाल रहा था, उबल रहा था उधर, और दूध उबलने लगा गिरने लगा, तो यशोदा माई ने सोचा अरे ये दूध तो भगवान की मिठाई बनाने के लिए रखी हूं, तो भगवान को हटा दिया और बैठा दिया और भाग के गई। भगवान क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए और सब तोड़ फोड़ने लगे और बाद में मटका फोड़ दिया खा लिया। तो क्या यशोदा माई का भक्ति भक्ति था कि नहीं, क्योंकि भगवान अप्रसन्न हुए, भगवान क्रोधित हो गए, नहीं, ये शुद्ध भक्ति है। क्यों? क्योंकि यशोदा माई की भावना थी वो भी कृष्ण की सेवा के लिए है, वो इतना दूध मैं खास खास दूध एकत्रित करके यहां लाई हूं पद्मगंधक गायों का, तो वो अगर चला जाएगा तो ये भी कृष्ण के लिए ही है, तो एक क्षण के लिए मैं यहां रखूंगी कृष्ण को और वो करूंगी। तो भले भगवान क्रोधित हो गए पर अनुकूल लेना, भावना थी अनुकूल। तो ये तीन चीज जो है ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। भक्ति तब होगी जब वो कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, भक्ति तब भक्ति है वो कार्यकलाप कार्यरत होना चाहिए जो अनु यानी भगवान के इच्छा के अनुसार परंपरा के अनुसार परंपरागत जो हमने प्राप्त किया है उसके अनुसार होनी चाहिए, और तीसरा अनुकूल लेना। तो ये दूसरा भाग जो है डेफिनेशन का, कृष्ण अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, तो ये तीन चीज भक्ति। तो यहां हम लोग जितने लोग बैठे हैं हम बोलेंगे प्रभु जी हम लोग तो मतलब उत्तम भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण का हम तो कृष्ण नरसिंह वराह वामन इतने ही करते हैं और किसी को नहीं, और शीलनम हम कार्यकलाप है श्रवण करते हैं कीर्तन करते हैं पूजा करते हैं घर में जप करते हैं, और अनुशीलनम जो हमने प्रभुपाद से सुना है उनके प्रतिनिधियों से सुना है उतना ही कर रहे हैं, और अनुकूलन हमारी इच्छा है प्रभु जी भगवान को मारने की नहीं, भगवान में लीन होने की नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की है। यस ये भक्ति है पर उत्तमा भक्ति नहीं है, ये मिश्रित है, ये अभी तक ये साधना भक्ति है। क्यों? क्योंकि तटस्थ लक्षण नहीं आए अभी तक इसके अंदर, और ये तटस्थ लक्षण क्या है जो शुद्ध और भक्ति में, साधारण भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है, ये पहला दो चीज, पहला दो चीज क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दुर्भाग्यवश हमारा हिडन एजेंडा भी होता है, देवता भक्त हैं उनका कोई भी तकलीफ होता है तो भगवान के पास ही जाते हैं वो, पर प्रभु आप भी खुश हम भी खुश, तो अन्य अभिलाषा शून्य नहीं है हमारा, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम कर्मकांड में मिश्रित है, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा क्या होगा उसका क्या होगा, और शायद भगवान है कि शायद हम भी भगवान भी थोड़ा बहुत ये सब कचरा है, अभी तक शुद्ध नहीं है। भक्ति है, घी है, पर उसके अंदर बहुत सारा अभी उबालना पड़ेगा, अभी बहुत उबाल उबाल के सारा कचरा निकलेगा, तब वो जो अभी घी है उसके अंदर जो बहुत सारा मिश्रण है वो शुद्ध हो जाएगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो उसमें प्रमुख लक्षण है इसके अंदर, कृष्ण अनुशीलनम और अनुकूल्यन, ये है। पर अभी तक अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं। तो ये हम लोग शायद देखेंगे, दोपहर को होगा तो दोपहर को भी इसको चर्चा करेंगे इसके बाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि।